أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين يا رب العالمين. جی ابھی ہم نے ریسنٹلی کتاب صلاۃ الکسوف پڑھی بھی ہے اور کل ہی ہمیں اس کی میرے خیال میں ریمائنڈر بھی ہو گیا ہوگا، ایک ذہن میں ریفریش بھی ہو گئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے یہ نماز پڑھی ہے تو. جی اور بھی کیا کچھ کرنا تھا اس ٹائم پہ، اگر آپ لوگ اپنی کتاب کھول لیتے اس وقت تو بہت ہی زیادہ آسانی ہو جاتی. اور جب ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ ایسے کوئی وقت ایسا دیکھیں اور اس کے اوپر ہمیں وہ انفارمیشن پتا ہو جو ہمارے گھر والوں کو نہیں ہے، تو بچوں کو بٹھا کے ضرور بتایا کریں. اور آسان طریقہ جو میں نے گھر والوں کو بتایا، آسان طریقہ سب سے جو وہ یہ ہے کہ بس یہ کہیں کہ دو نفل پڑھنے ہیں اور دونوں رکعت میں ایک ایک ایکسٹرا رکوع کرنا ہے، تو آسان ہو جائے گا بہت ان کے لیے سمجھنا. یہ بہت کمپلیکیٹڈ نہیں بنائیں کہ اتنی لمبی پھر اس کے بعد سے اس سے تھوڑی لمبی پھر اس کے بعد سے تیسری میں اس سے تھوڑی لمبی، وہ پھر بچوں کو کنفیوژن ہو جائے گی. بس یہ بتا دیں کہ ایک ایک ایکسٹرا رکو کرنا ہے اور لمبی لمبی کے رات کریں، تو وہ کتنی لمبی کر لیں گے، ظاہر ہے بہت زیادہ لمبی تو بچے نہیں کر سکتے، مگر ایٹ لیسٹ گھر والوں کو بھی کم از کم ایک دفعہ وہ یہ نماز پڑھ لیں اور گو تھرو ہو جائے نا یہ عمل، تو بہت ہی اچھا ہوگا، ہمیشہ ان کو یاد رہے گا. جی چیریٹی بھی کرنی ہے اور استغفار بھی کرنی ہے. بہت زیادہ میں نے دیکھا کہ یہ جو فون پہ جو گروپس ہوتے ہیں ان میں بھی لوگوں نے ان چیزوں کو بھیجا ہوا تھا، مگر ایک چیز تھی جو کہ تھوڑی سی مجھے وہ لگی کہ شاید تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے، پہلے رکوع سے کھڑے ہوں گے، تو دوبارہ سورہ فاتحہ نہیں کرنی بلکہ دوبارہ قرات شروع کر دینی ہے. اگر سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھ لی تو پھر تو چار رکعتیں ہوں گی، یہ تو دوسری رکعت ہو گئی، تو ان میں یہ لکھا تھا کہ رکوع سے کھڑے ہو کے پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں، تو ہم سیکنڈ رکعت نہیں پڑھ رہے، ہم تو وہی رکعت ہے اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، صرف اندر ایک ایڈیشن کی ہے ایک اور رکوع کی. ٹھیک ہے، اور لمبی لمبی یہ نہیں بتانے کی ضرورت، یہ نماز چار سجدے اور چار رکوعات کے ساتھ ہوتی، یہ نہیں، بس بچوں کو اس طرح سے بتائیں کہ دو رکعتیں پڑھنی ہیں اور دونوں میں ایک ایکسٹرا رکوع کرنا ہے بیچ میں، اور پڑھنے کا طریقہ آپ ساتھ کھڑے کر سکتے ہیں، ساتھ پڑھا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو آپ کر کے دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ کہ چونکہ ہمارے ذہنوں میں ابھی فریش بھی تھی تو الحمدللہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے نا. تو دیکھیں کوئی بھی علم جو آپ نے لیا ہے قرآن اور حدیث کا ضائع نہیں جاتا، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کا فائدہ ہی ہوگا آپ کو. جی ٹیکسٹ کھلا ہوا باقی لوگوں کے لیے بھی، اگر آپ لوگوں نے نہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ابھی تک شیئر کیا تو پلیز ضرور شیئر کیجیے، اور ضرور یہ بتائیں. بچوں کو بہت اس چیز سے بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشہ لینے کے لیے آگے گئے، اور آگے اگر وہ لے لیتے تو رہتی دنیا تک لوگ کھاتے رہتے اور وہ ختم نہیں ہوتا. آپ دیکھیے گا کتنے بچے اس سے فیسینیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمیں اچھا لگتا ہے نا سن کے، تو ان کو کیوں نہیں اچھا لگے گا. تو آپ اس کو ذرا تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنا کے اس طرح بتائیں کہ کیسے انہوں نے کیا، کس طرح سے ہوا. اب اگر اپنا یہ چیپٹر کھول لیں گے نا تو جو باتیں آپ کے ذہن میں ابھی تھوڑی سی محو ہو گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی یاد آ جائیں گی. اگر کل نہیں شیئر کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کر لیں شیئر، کوئی بھی وقت اس میں دیکھیں علم لینے میں کچھ بھی کوئی بھی وقت دیر نہیں ہوتی، تو آج کر لیں. اور دعائیں، تکبیریں اور صدقہ یہ سب ایڈیشنل ہے. جو لوگ نئی نماز پڑھ سکے یا نہیں اپنی ناک پاکی کی وجہ سے پڑھ سکے تو دعائیں تو سبھی کر سکتے ہیں، تکبیرات بھی سبھی کر سکتے ہیں، اور صدقہ بھی انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں گے. हाँ जी, कोई महाराज नहीं, मून देखने में वैसे मैंने तो देखा कि कल बादल थे तो ज्यादा कुछ नजर नहीं आया हमारी तरफ, लेकिन देखना भी चाहे तो कोई ऐसा कोई इसके अंदर कोई मुमानियत की बात नहीं। ठीक, अच्छा जी, चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। उस बिल्लाशीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग यहाँ तक हमने रिव्यू किया था कि तीन किस्म के घोड़े होते हैं, तो वहीं पे हमारी बात खत्म हो गई थी। तो इस चीज के अंदर ये देख लें कि देखें, एक है अजर सवाब के लायक, एक जिसमें अजर है, एक जिसमें अजर नहीं है बल्कि उसमें वबाल है यानी सजा है उसके ऊपर, और एक है जिसमें ना सजा ना जजा, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो तीन तरह के घोड़े हैं। इसमें मैं आप लोगों को ये बात इसलिए भी ज्यादा एम्फोसाइज करना चाहती हूँ कि आज घोड़े नहीं है मगर गाड़ियां हैं, और गाड़ियां भी तीन तरह की हैं। पता है आपको, कुछ गाड़ियां वबाल भी हैं, वबाले जान, जिनके ऊपर सजा मिलेगी, जो फखर और दिखावे और इसलिए है कि लोगों के अंदर अपनी बर्तरी जताई जाए कि मेरे पास ये ब्रांड नेम की गाड़ी है और मैं इसमें बैठ के। और मैं इसमें बैठ के अपने आप को बहुत वो जाहिर कर सकूं कि मेरे पास कितना माल है और मैं कितनी बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकती हूँ। इसी तरह बाज़ गाड़ियाँ वो भी हैं जो सवाब की नहीं है, जो सवाब उसमें हमें मिलेगा, और वो गाड़ियाँ वो हैं जो मस्जिद की तरफ दौड़ लगाती हैं, और वो गाड़ियाँ हैं जो किसी के काम आने के लिए इस्तेमाल होती हैं, किसी की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, किसी को हो सकता है तालीम के लिए आप लेके जा रहे हो, किसी को किसी और किस्म की हेल्प कर रहे हो, वो गाड़ियाँ भी हैं, वो हमेशा दूसरों के काम आने वाली हैं, उसके अंदर अजर है। और कुछ हैं कि जिसमें हम मसलन है बच्चों को स्कूल लेके जाते, ग्रोसरी करते, जॉब पे जाते हैं, तो ना उनका कोई अजर और ना कोई सवाब और ना कोई सजा। तो आप देखें कि मेरी गाड़ी मुझे क्या देगी, ये जरूर नोट करिएगा। ठीक है, शाला उतारा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। जी, यास्मीन इकबाल, आप बताएंगी कि क्या घोड़े और गधे के ऊपर ज़कात है?
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी
जी घोड़े और गुलाब पर ज़कात नहीं है।
जी वो घोड़े और गुलाम पे ज़कात नहीं है, शाबाश, उनके ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर ऊंट हो तो उसके ऊपर है, गाय और बकरी वगैरह हो तो उसके ऊपर है, वो उस जमाने में एज यानी वो भी माल ही तसव्वुर किए जाते थे। अच्छा, ये 281 नंबर से, 281829 नंबर से कौन है?
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला। जी, आप बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले लोग कौन है?
जो माल जमा करते हैं और उसकी ज़कात अदा नहीं करते हैं।
शाबाश, जो माल जमा करते हैं और उसको ज़कात अदा नहीं करते, और इतनी ज्यादा ये मुझे तो खौफजदा करने वाली हदीस लगती है। और सुबहान अल्लाह, देखिए, मैंने आपको हज़रत अबू ज़र का भी बताया था अपनी तफसीर क्लास में, किस तरह के जुहद वाले थे वो कितना डर जाते हैं। वो कहते हैं कि मतलब क्या मुझ में कोई ऐसी बात नजर आई है, मेरी हालत कैसी है, यानी उनको अपनी कितनी फिक्र पड़ गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के रब की कसम खा के फरमा रहे हैं कि खसारे वाले हैं, खसारे वाले हैं, खसारे वाले हैं। मैंने जिनके पास माल ज्यादा है, सबसे पहले तो इंसान को यही बात इतनी डरा देती है ना कि माल ज्यादा होना, देखें हम दुनिया में इसको कितना अच्छा समझते हैं, किसी की सैलरी बढ़ जाए, किसी के पास माल ज्यादा आ जाए, हम इतना इसको ना इसी के अंदर एक फखर और गरूर और इसी के अंदर मुकाबलेबाजी करते हैं, हालांकि वो लोग तो बड़े खतरे में हैं, इन डेंजर, बहुत ज्यादा डेंजर में है। जब तक कि वो माल को दाएं बाएं मतलब चारों तरफ ना खर्च करें, और इसमें जकात भी और इसमें सदा भी और इसमें सब आ जाता है। देखिए, आप इसको ना हाईलाइट करें, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अहादीस में से जो सब्सटेंस है, आप सबके हाथ में हाईलाइटर जरूर होना चाहिए। कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही, मौका मिला, तो मैं आप लोगों की ये लूलू वल मरजान की किताबें चेक करूंगी। ठीक है, न्यूजर्सी वाले तो ज्यादा अलर्ट रहे, मैं आपकी किताबें चेक करूंगी, क्योंकि आपकी किताब में जहां पे हदीस है असल उसका सब्सटेंस है, वहां पे हाईलाइट होना चाहिए। मेरी बुक में अगर आप देखेंगे कभी तो हर जगह में हाईलाइटेड है। जैसे मसलन यहाँ पे मिसाल के तौर पे, अब ये मैं आपको बताती हूँ, मसलन हदीस नंबर है ये 577। अब इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा जमा करने वाले ही सवाब की हैसियत से कम हासिल करने वाले होंगे, सिवाय उसके जो अल्लाह के बंदों पर माल इस तरह यानी कसरत के साथ खर्च करे। सिर्फ इतने को हाईलाइट किया हुआ ताकि कभी भी मैं किताब खोलूं अब मैं लॉस ना हो जाऊं, अच्छा इस पूरी हदीस में क्या है, अब ये पढ़ रही हूँ, और उसके बाद एंड की लाइन को किया हुआ कि मेरी उम्मत का जो शख्स भी इस हाल में मरे कि ये ठीक है, इसको हाईलाइट किया हुआ। अब आपका ये काम होता है जब आप घर में दोबारा पढ़ते हैं तो आप इन लाइनों को हाईलाइट कीजिए प्लीज, पूरी हदीस में से देखें उसका सब्सटेंस क्या है, उसका निचोड़ कहाँ पे है। यस, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हदीस नंबर 576 है और यहाँ पे हाईलाइटेड है मेरे पास जिसके पास ऊंट गाय या बकरी और इसका हक अदाना किया हुआ, ये सारा ये हाईलाइटेड है, ठीक है। तो इस तरह आपकी सारी बुक में होना चाहिए, कोई भी हाईलाइटर ले लें आप किसी भी कलर में और उसको इस तरह से करें। इसी तरह जैसे आप सलातन कसूफ का जो था किताब थी उसके अंदर भी जो नमाज का तरीका है उसको सिर्फ इतनी इतनी लाइन को, अब लंबी लंबी चीजों को नहीं करेंगे, अगर लंबी को किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहाँ पे किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 523 हदीस है मेरे पास, तो क़याम किया रुकू खड़े हुए क़याम फिर लंबा किया रुकू किया सजदा में गए क़याम किया क़याम से फिर लंबा रुकू रुकू से सर उठाया क़याम रुकू किया, इससे मुझे सारा पता चल गया कि क्या क्या हुआ, ठीक है। अब ये आपका काम है, ठीक है, मेरी बुक से नहीं आप कर सकते, इसलिए क्योंकि ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस है कि आप देखें कि इसमें से जिस्ट क्या है, इसका निचोड़ क्या है, ठीक है। अब उसका निचोड़ आपने खुद जब उसके अंदर देखना है ना, तो आपने देखना है कौन कौन सी चीज है जो कि रियली इंपॉर्टेंट है। और जब आप अपनी कभी भी किताब खोलेंगे, क्योंकि आप सारी जिंदगी तो आप लूलू वाल मरजान नहीं आपने पढ़नी, आप जिंदगी में कभी भी निकालेंगे ना तो आप ये एकदम हाईलाइटेड होगी आपके सामने कि जिसके पास ऊंट गाय और बकरी और वो उसका हक अदा ना करे तो क्यामत के दिन उसको ये होगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे मेरे पास हाईलाइटेड है घोड़े के मालिक तीन तरह के, ठीक है। और आगे मैंने क्या हाईलाइट किया हुआ, क्योंकि मुझे भी कोई हर वक्त हर चीज जहन में याद नहीं रहती, आगे मैंने हाईलाइट किया हुआ अजर व सवाब पर्दा व बाले जान। अब एकदम मेरे दिमाग में आ गया कि जो है क्या चीज है, सही है ना। और मैं आप सबको चाहती हूँ जितने स्टूडेंट्स हैं, देखिए जो इल्म सीखने का ना एक तरीका होता है, अगर आप इस तरह से लॉस्ट रहेंगे वो अंदर तो फिर बस ढूंढते ही रहेंगे कि कौन सी बात कहाँ थी, सही। अच्छा जी, नहीं अभी हाईलाइटर ले आए उतनी देर, अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंशाल्लाह मंगवा के रखें। तो ये आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा खसारे वाले जब इनको कहा गया और ये बताया गया कि जो लोग दुनिया में मालो दौलत जमा किए हैं क्यामत के दिन वो सबसे ज्यादा खसारे वाले होंगे, तो फिर आपको एकदम दिल में वो फिक्र लाहक हो जाती है कि मुझे सिर्फ जकात ही नहीं देनी, यहाँ पे कहा गया दाएं बाएं आगे पीछे खर्च किया, ठीक है। इट इज मोर देन जकात कि हर वक्त वो कोई अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देते, कोई चांस जाने नहीं देते, उनको फिकर है, वो ये नहीं कि बस अपने पास रख रख के सींचते रहते हैं और जमा अपने लिए करते रहते हैं, चाहे दुनिया में लोग मर रहे हैं, भूख हो गुर्बत हो, लोगों के पास छत नहीं है और वो अपने घरों से बेयारों मददगार कहीं पड़े हुए, लेकिन हमें क्या, हमें तो अपने खजाने भरने, हमने उनका ऐसा हाल नहीं होता, मोमिन बेहिस नहीं होता। तो इस चीज को आप जरूर अपने पास रखिएगा जी, अंडरलाइन कर लेते हैं ठीक है, मगर अंडरलाइन में और आप हाईलाइट भी करके देखिएगा, फिर दोनों में मुझे आप खुद फर्क बताइएगा कि क्या डिफरेंस आपको लगा, ठीक है। अंडरलाइन वाला आपको कभी भी ज्यादा सही नजर नहीं आएगा, हाईलाइटेड वाला एकदम ऑरेंज हाइलाइटर है या ब्लू है या ये है, तो एकदम वो आपकी आंखों के सामने वही चीज आती है। अच्छा जी, अब किसकी बारी है जी? शाजिया नासिर, आप मुझे बताएंगी कि जो लोग जानवरों की जकात नहीं देते, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जानवर की भी जकात होती है, तो जो जानवर की जकात नहीं देते तो कयामत के दिन उनके साथ क्या होगा?
अस्सलाम
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम। जो लोग अपने जानवर जो उन्होंने मवेशी पाले होते हैं उनकी वो ज़कात नहीं देते, जैसे ऊंट गाय बकरी, तो क़यामत के दिन इस जानवर को लाया जाएगा जो मोटी ताजी हालत में होंगे, और वो इंसान को रौंदेंगे, और ये अमल हशर के मैदान में होगा। इसके बाद हिसाब किताब का अमल कायम होने का बाद में आएगा, जब तक
अच्छा
लोगों का फैसला हो जाएगा उनके साथ यही होता रहेगा, और वो बार
अच्छा
बार आती रहेगी, बार बार उसको रोनती रहेंगी, सींग मारेंगी, उसे टक्करे मारेंगी उस
अल्लाह
इंसान को जिसकी वो आती है।
अकबर। और ये बताएंगी कि कितने जानवर हों, ऊंट मसलन कितने हों कि उनके पर ज़कात है?
5 ऊंट पर 1 बकरी।
5 ऊंट के ऊपर ज़कात होगी, ठीक है? 5 ऊंट से कम में नहीं, ठीक है? 5 ऊंट से कम में नहीं होगी, तो यानी इससे शुरू हो जाती है ज़कात लगनी जानवरों के ऊपर। अच्छा जी, हमारे यहाँ ऊंट तो ज्यादातर नहीं, लेकिन गाय बकरियां वगैरह लोग पालते हैं, लेकिन लोगों को ज्यादातर ये शऊर नहीं होता कि गाय या बकरी के ऊपर भी ज़कात लगेगी, ठीक है? अच्छा जी, हदीस नंबर 577 देखें। ये इससे अब मैं किससे पूछूं जी? चलिए शनाशा आप बताइए, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका पता चलता है तरबियत करने का? हदीस नंबर
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मुझसे पूछ रही
जी
हैं,
जी जी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम
आवाज
वरहमतुल्लाह।
बहुत कम आ रही है मेरी तरफ, क्या सवाल क्या था?
जी, मैंने कहा हदीस नंबर 577 खोलें, ये देखें कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें तरीका क्या पता चलता है तरबियत करने का।
तरबियत का पता जो यहाँ पे जो अबू जर रज़ियल्लाहु
जी
अन्हु उनके साथ जा रहे थे, तो उनसे कहा था कि यहाँ से इस जगह को नहीं छोड़ना, इसकी बात कर रही हूँ।
हाँ, कहीं पे भी पूरी हदीस में से भी आप कहीं बता दें कि कैसे उन्होंने तरबियत करते थे अपने सहाबा की, किस तरह उनको सिखाते थे बात। ये थोड़ी सोचने की बात है। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा आप ये बता दें,
हदीस का तो यहाँ
चलें
पे
मैं आप लोगों
बताया
को,
था
कोई
कि
कोई
बंदे
मसला नहीं।
ने अगर शिर्क भी ना की हो, ये
सही
असल
है,
में तो ये था,
सही
लेकिन अबू जर ने पूछा था कि चाहे उसने जिना भी की हो या
सही
चोरी भी की हो,
चल। अच्छा
औरत
ये
के अंदर
बताइए, ये लोग
जिस तरह
रात
की
में
हो।
चल रहे थे, ईशा के बाद जा रहे हैं, तो क्या ईशा के बाद इस तरह से निकल के फिर बातें करना ये सही है?
वो अगर हम तालीम के लिए अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, फिर हम
ठीक,
जाग जाग के वो कर सकते हैं, फिर
शाबाश,
वैसे तो
बिल्कुल
नहीं।
सही है,
जी
शाबाश, जज़ाकअल्लाह खैरन शहनाज। असल में आप ये देखें, थोड़ा सा इस पे भी गौर करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तरबियत कैसे तरबियत करते थे, आप इसको गौर करें। तो जैसे हम लोग तरबियत करना चाहते हैं ना, जो अपने बच्चों की, तो हम हर वक्त ये कहते हैं ये नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, ये करो और ये करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर रख के फरमाया कि अगर उहद के पहाड़ के बराबर भी मेरे पास सोना होना, तो मुझे एक रात भी ऐसी नहीं गुजरेगी, ना 3 रात के इसमें एक दिनार भी मेरे पास बाकी बचे, सिवाय जो कर्ज की अदायगी के लिए। तो कितना खूबसूरत तरीका तरबियत है, ठीक है? ये नहीं कि तुम करो, सदका करो, क्यों नहीं करते, ज्यादा खर्च क्यों नहीं करते, अपने ऊपर रख के बताया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तरबियत ऐसा ही हुआ करता था कि जो भी चीज होती थी ना, बातों बातों में ऐसे सिखा देते थे कि जिस पे पता ही ना चले दूसरे को कि उसने क्या सीख भी लिया। कोई बहुत हर वक्त लेक्चर नहीं देते रहते थे, वो उनकी बातों से ही दूसरा बंदा सीख जाता था। सुभान अल्लाह, आप कहीं देख रहे हैं तो कोई किसी औरत को अपना बच्चा ढूंढ रही है, तो उसके ऊपर अल्लाह की रहमत का बता दिया। कहीं देख रहे हैं कि कोई परिंदा है वो अपने बच्चे के ऊपर, बच्चों के ऊपर आके गिर गई है, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला की शफकत का बता दिया। कभी सितारों को देख रहे हैं तो उससे कुछ बता दिया। यानी डिफरेंट चीज़ों को देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से तरीका, किस तरह से बताते थे और कैसे तरबियत करते थे, ये हम तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें किस तरह से तरबियत होती है। ठीक है, फिर आप देखें कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहि सलाम से कुछ सीखने के लिए जा रहे थे, उस पर्पज से घर से निकले ईशा के बाद, और उसमें हजरत अबू ज़र आपको मिल गए और वो साथ चल पड़े। और आप ये देखें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप यहाँ बैठे, तो आपको क्या सहाबा का अमल पता चलता है, इन सहाबी का क्या अमल पता चलता है इस चीज से। हुमा गनी आप बताएंगे कि सहाबा के अंदर क्या चीज थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ पे बैठे और उसके बाद क्या हुआ यहाँ से नहीं।
वालेकुम
अस्सलाम रहमतुल्लाह।
यहाँ से ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और हुक्म को जो है उन्होंने ऊपर रखा, क्योंकि जब आवाज आई थी तो वो अल्लाह ना करे वो ये समझे कुछ हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन जब आपका हुक्म सामने आ गया ने जो है सहाबे ने उनकी फलावदारी।
शाबाश, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उनको सबसे ऊपर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि यहाँ से नहीं हटना, तो अब चाहे जितना भी मुझे खदशा हो गया, जो भी हो गया, मैंने नहीं यहाँ से हटना। तो सुभानअल्लाह, इसमें सहाबा कराम की फरमा बरदारी भी आपको पता चलती है कि कितनी ज्यादा उनके अंदर जज्बा फरमा बरदारी का था। ठीक है, अच्छा अब जी राश्ता कालिया आप बताएंगी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या खुशखबरी दी और किसके लिए खुशखबरी दी थी। अल्लाह अकबर। जी राश्ता कालिया जी जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
जी उन्होंने खुशखबरी दी कि जो भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा वो जन्नत में जाएगा,
चाहे
चाहे वो जना करे या चोरी करे।
शाबाश शाबाश, यानी चाहे वो जिना करे या चोरी करे लेकिन वो जन्नत में दाखिल होगा। ये 732906 नंबर से कौन है, अपना नाम बताएं जी। 732
राफिया,
राफिया राफिया आप बताएंगी कि क्या इसके बाद इंसान को खुली छुट्टी इजाजत मिल जाती है कि वो कुछ भी करे, क्योंकि आखिर तो उसको जन्नत में ही चले जाना है। क्या ये हदीस से तो हमें पता चल गया ना कि वो जन्नत में जाएगा, तो फिर ठीक है। कोई हमें कहता है कि ठीक है मैं शिर्क तो नहीं ना करता, और यहाँ पे ये हदीस में आ गया कि शिर्क ना करे, तो अब चाहे अब जिना करे, शराब पिए, लोगों के साथ जुल्म करे, तो क्या फर्क पड़ता है। इजाजत मिल गई है इस हदीस से।
नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जन्नत मिल जाने का ये मतलब नहीं है कि वो गुनाह करे, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जन्नत तो उसे है, लेकिन फिर वो जन्नत जब मिलेगी, क्योंकि अगर उसने दुनिया में अजाब किया जैसा शराब पिया या गुनाह किया, जो भी गुनाह किया, तो वो उसकी जरूर सजा मिलेगी उसे, उसके बाद वो जन्नत में जाएगा।
शाबाश, देखें जिसको अल्लाह ताला की तरफ से सजाओं का इल्म हो और जिसको जहन्नम की आग का इल्म हो, वो तो एक लम्हे के लिए भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ये कहे कि कोई बात नहीं, मैं ये जन्नत में तो चला ही जाना है, ये देखो ये तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है और इसमें तो ये लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं है, फिर उसके बाद अगर जिना और चोरी की और शराब भी पी तो कोई बात नहीं, सजा काट के हम एक दिन तो चले ही जाएंगे, ये कहना मुंह से, दुनिया की आग तो हम बर्दाश्त कर नहीं सकते, उस जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई ना ये समझे कि छुट्टी मिल गई है, जैसे इन्होंने अभी बताया कि सजा काट के जाएंगे, अब सजा कैसी होगी, क्या उसकी इंटेंसिटी होगी, और अल्लाह से बेखौफ होके और उसकी सजाओं से बेखौफ होके इंसान गुनाह करता चला जाए, वो तो उसकी उस गुनाह की इटसेल्फ इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, कि वो गुनाह की संगीनी और बढ़ जाती है कि इंसान, एक इंसान है वो डरता है अल्लाह से, वो कहता मुझसे गलती से हो गया, मैं अब नहीं करूंगा, ये इसकी बड़ी सजा है, तौबा करता है फिर से हो जाता है, फिर हो जाता है, वो एक अलग बात है। और एक इंसान न डर हो जाए, ठीक है तो देखी जाएगी उस वक्त जो सजा होगी देख लेंगे, और एक दिन तो हमने जन्नत में चले जाना, वो एक बिल्कुल अलग बात है। तो एक अल्लाह से न डर हो के गुनाह किए चले जाना और ये सोचना कि काट लेंगे अल्लाह की सजा, ये बहुत ही ज्यादा उस गुनाह को बढ़ा देती है, उसकी सजा को बढ़ा देगी। और क्या एक सेकंड के लिए भी कोई बर्दाश्त कर सकता है जहन्नम को? और फिर पता नहीं कितने साल हूं वहां पे जो जहन्नम में इंसान पड़ा रहेगा। तो कोई इंसान जो जानता हो अल्लाह ताला की सजाओं को, वो कभी नहीं डेयर कर सकता ये कहने से। तो ऐसे ही है, दुनिया में कोई कह दे कोई बात नहीं, इस चीज की सजा 100 साल जेल है ना, तो कोई बात नहीं, मैं ये फ्रॉड कर लेता हूँ, 100 साल जेल के में रहने के बाद आखिर तो निकल जाऊंगा ना, कोई कहता है ऐसे? कोई बात नहीं, इस चीज की सजा हाथ काटना है ना, हाथ कटने के बाद तो फिर मैं ठीक होऊंगा ना, ऐसे तो कोई नहीं कहता। दुनिया की तो ये छोटी सजाएं हैं, उम्र कैद हो जाएगी, कोई बात नहीं, उम्र कैद के बाद फिर मैं निकल तो आऊंगा, नहीं ऐसे नहीं कहते। तो अल्लाह की सजाओं को इतना हल्का समझा है कि उसको फौरन ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, जहन्नुम से निकल तो आएंगे ना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। अच्छा जी, जिन अच्छा ये आप किसकी बारी है? जी आंटी शकीला, आप बताइए कि जिन अहादीस से शुरू में लिखा होता है, स्टार्ट में लिखा होता है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तो उन अहादीस को क्या कहते हैं?
बेटा आपने मुझे नाम सुनाई नहीं दिया, मुझे
जी
किसी
जी
लाइन करनी
जी
है।
आपसे ही पूछ रही हूँ कि जिस हदीस के शुरू में ये लिखा होता है अल्लाह ताला फरमाता है, उस हदीस को क्या कहते हैं?
हदीसे कुदसी कहते हैं,
शाबाश
अल्फाज अल्लाह ताला कहते हैं, लेकिन बयान हदीस वसलम फरमाते
जी,
हैं।
शाबाश, बिल्कुल सही है। अच्छा, हदीस नंबर अगर आप लोग निकाल लें 581। अच्छा, हदीस नंबर 581 में क्या पता चलता है कि इंसान किस पर सबसे पहले खर्च करे? अच्छा, ये भी हो गए हैं जी। नफीसा, आप बताएंगी सबसे पहले इंसान किस पे खर्च करे?
सामने कौन रहने तो मैं
वालेकुम
बताता
अस्सलाम
हूँ
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी
जी, सबसे पहले अपनी जात पे और फिर अपने अहल पर और फिर अपने अजीज और कारिब पर ना।
शाबाश, यानी आप देखें कि कितना प्यारा बैलेंस हमें हमारा दीन सिखाता है कि सबसे पहले अपनी जात पर खर्च करें, फिर अपने घर वालों पे खर्च करें, फिर अपने अजीजों कारिब पे खर्च करें। बाज दफा लोग ऐसे भी करते हैं, दूर पार के रिश्तेदारों के ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं और अपने घर में अपने बच्चे जो हैं भूखे बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, ना उनकी पढ़ाई के लिए कुछ है ना कुछ है, फलां को दे रहे हैं, फलां को दे रहे हैं, फलां के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उधर भेज रहे हैं, उनकी शॉपिंग्स के लिए दे रहे हैं। तो देखें, ये नहीं, अल्लाह ताला हमें खर्च में भी रहनुमाई फरमाता है कि किस तरह आपने खर्च करना है। बाज औरतों को शिकायत ही रहती है कि उनके खामन सही तरह इतदाल से खर्च, तो अगर हम इस हदीस की रोशनी में देखें तो हमें बहुत अच्छा बैलेंस मालूम होता है। जी अच्छा, इस हदीस में अगर सर रेडी हैं तो फिर हम इंशाल्लाह क्लास शुरू कर देते हैं जी। आप पता कर लें एक दफा। इस हदीस से और हमें क्या पता चलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इस आदमी ने अपना कुल माल, जो गुलाम के सिवा कुछ नहीं था, तो यानी उसको भी सदका कर दिया अपने बाद के, मेरे मरने के बाद ये भी सदका ही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था फिर? तहसीन, आप बताएंगी इसके ऊपर क्या एक्शन लिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वालेकुम
जी,
अस्सलाम बताती हूँ जी। जी
इसमें
जी आ रही है, बताइए।
मैं कि पहले उसकी इसलाह की ना, कि उसने जो गलत वसीयत करके किया था कि उस गुलाम को आजाद कर दिया जाए जब वो फौत हो उसके बाद, तो उसकी इसलाह की थी, गुलाम को बेचा था 800 दिरहम में, और फिर उसके बाद उसकी कीमत को जो है वो फिर उसके घर वालों को दिया था।
क्या क्या की थी, यानी क्या क्या इसमें गलती क्या थी?
मतलब वो जो गुलाम को आजाद किया गया था, तो हम वसीयत जो है वो पूरी उस पे नहीं कर सकते, मतलब आप अपना सारा
बिल्कुल,
कुछ जो है
यानी
वो
उसने अपने घर वालों के लिए,
दे नहीं
वारसों के लिए
सकते।
कुछ भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसके पास था ही एक गुलाम, वो भी उसने ऐसे आजाद कर दिया, तो फिर वारसों के लिए क्या बच गया? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैंसिल कर दी थी ऐसी वसीयत, गलत वसीयत थी ना ये। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैरन। गुलाम थ्री काइंड ऑफ गुलाम। अच्छा इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।